दिन भर तारीख 16 जनवरी दिन बुधवार, मैं हूँ मानसी दाश। कर्नाटक में कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार के ऊपर से छट नहीं रहे संकट के बादल।
ये जो नाटक चल रहा है ये कांग्रेस का और जनता दल का आंतरिक प्रश्न है।
कीनिया में सुरक्षा बलों ने होटल को चरमपंथियों के चंगुल से छुड़ाया, राष्ट्रपति ने कहा।
We will seek out every person that was involved in the funding.
दुनिया जहान में आज जानिए सीरिया में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ क्यों है तुर्की।
वो सीरिया की टेरिटरी लेके इराक के कुर्दिस्तान को ज्वाइन करके बड़ा सा कुर्द स्टेट एमर्ज हो सकता है जो तुर्की के लिए थ्रेट पैदा हो सकता है।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मीना कोटवाल से। कर्नाटक में ऑपरेशन कमल 3 के तहत जारी राजनीतिक उठापटक के बीच दो निर्दलीय विधायकों ने सत्तारूढ़ जेडीएस कांग्रेस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अभी और विधायक अपना पाला बदलकर उनकी ओर आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस राजनीतिक हलचल को गठबंधन सरकार का आंतरिक मामला बता रही है। भारत सरकार का कहना है कि इस साल मुस्लिम महिलाओं ने बिना किसी पुरुष संरक्षण के हज यात्रा पर जाने के लिए रिकॉर्ड संख्या में आवेदन किया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 2340 भारतीय महिलाएं 2019 में अकेले सऊदी अरब की यात्रा करेंगी। उन्होंने कहा यात्रियों का चयन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लॉटरी सिस्टम से इतर इन महिलाओं को सीधे ही सऊदी अरब जाने दिया जाएगा। बता दें कि भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। भारत ने पिछले साल से महिलाओं को बिना किसी पुरुष संरक्षण के मक्का जाने की इजाज़त देना शुरू किया है। जर्मनी की चांसलर अंगेला मर्केल ने कहा है कि यूरोप चाहता है कि ब्रेग्जिट के कारण कम से कम नुकसान हो। ब्रिटानी संसद में यूरोपीय संघ से निकलने का सौदा खारिज होने को लेकर उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को अपने अगले कदम खुद ही तय करने होंगे। उधर ब्रिटानी संसद में यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के प्रधानमंत्री टेरेसा मे के सौदे के खारिज होने के बाद लेबर नेता जर्मी कॉर्बिन ने कहा कि अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो पिछली रात को मिली हार के बाद ही इस्तीफा दे चुका होता। उन्होंने कहा
This government has failed our country. It cannot govern, cannot command the support of most people facing the most important issue.
इस सरकार ने देश को निराश किया है, यह शासन नहीं संभाल सकती, ब्रेग्जिट को लेकर लोगों में भरोसा पैदा नहीं कर सकती। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि पहले जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन्हें जब भी बीती रात की तरह हार का सामना करना पड़ा है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये थे लेबर नेता जर्मी कॉर्बिन के शब्द। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा कि रूस और जापान कुरील द्वीपों को लेकर ही रहे विवाद और अन्य मतभेदों के कारण एक दूसरे के सहयोगी नहीं बन सकते। कुरील रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप है और जापान के होकोकाइडो द्वीप से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। इन्हें दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में सोवियत सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। लावरोव ने कहा कि दोनों देश अपने रिश्तों को सुधारने का रास्ता तलाशने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा
Признание итогов Второй мировой войны – это не ультиматум, это не предварительные условия, это
दूसरे विश्व युद्ध के नतीजों को स्वीकार करने के लिए कहना ना तो चेतावनी है और ना ही कोई शर्त। ये आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का अहम हिस्सा है। ये कोई शर्त थोपना नहीं, बल्कि यह समझने की कोशिश करना है कि जापान ही ऐसा देश क्यों है जो यह नहीं कह सकता कि मैं दूसरे विश्व युद्ध के नतीजों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकता। ये थे रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया से आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं पर मनबीज शहर में एक आत्मघाती हमला किया गया है। इसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 अमरीकी सर्विसमैन भी शामिल हैं। अमेरिका की ओर से अभी तक इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं आई है। इस्लामिक स्टेट समूह ने दावा किया है कि उसके एक सदस्य ने इस हमले को अंजाम दिया है।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कर्नाटक से, जहां सत्ता में आने को लेकर जारी उठापटक यानी ऑपरेशन कमल 3 अब भी रुका नहीं है। दो निर्दलीय विधायकों ने सत्तारूढ़ जेडीएस कांग्रेस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और भाजपा के नेताओं का कहना है कि उनके पाले में अभी और विधायक आएंगे और वो प्रदेश में सरकार बना सकेंगे। आधिकारिक तौर पर भाजपा ने मौजूदा हालात को गठबंधन सरकार का अंदरूनी मसला करार दिया है। सुनिए बंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
ये बात सही है कि कर्नाटका की जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार फिलहाल संकट में है, लेकिन जिस तरह गठबंधन के नेता अपना काम कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि बीजेपी को समर्थन देने वाले विधायक ज्यादा नहीं हैं। हाँ, मुंबई के एक होटल में 5 विधायक पिछले 3-4 दिन से वहां रुके हुए जरूर हैं। दरअसल राजनीतिक हलकों में कहा यह जा रहा है कि बीजेपी को गठबंधन सरकार को गिराने के लिए करीब 14 या 15 और विधायक की जरूरत होगी। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी अपने इलाकों की रिव्यू मीटिंग में मसरूफ हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया, कुछ नहीं हो रहा है। बीजेपी की कोशिश थी कि हमारे विधायकों का इस्तीफा लेकर हमारी सरकार गिरा दें। मेरी जानकारी के अनुसार उनकी कोशिश असफल रही है। इसके बावजूद वो हमारे विधायकों को लालच दे रहे हैं। आखिरकार बीजेपी का गठबंधन सरकार को गिराने का ये खेल सबके सामने आएगा। ये थे एचडी कुमार स्वामी के शब्द। तीसरा ऑपरेशन कमल का खेल इतना ही है कि अगर कांग्रेस और जेडीएस के 20 विधायक विधानसभा से अपना त्याग पत्र दे दें तो बीजेपी को उम्मीद है कि वह अगली सरकार बना पाएगी। विधायकों के त्याग पत्र से विधानसभा की संख्या 224 से 203 तक गिर गई तो बीजेपी अपने 104 विधायकों और 2 निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन कर्नाटका बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर वमन आचार्य इस मामले को अलग नजरे से देखते हैं।
कर्नाटका सरकार में कांग्रेस में बहुत अस्थिरता पैदा हुई है, क्योंकि इधर के जो एमएलए हैं दे आर अनहैप्पी विद द वे गवर्नमेंट इज रनिंग। ये जो नाटक चल रहा है ये कांग्रेस का और जनता दल का आंतरिक प्रश्न है। एक बार सेटल हो गया तो बाद में जो करना है वो हम करेंगे, तब तक हम शांति से दिल्ली में बैठे रहेंगे।
तीसरा ऑपरेशन कमल का मामला लोकसभा के चुनाव से ही जुड़ा हुआ है। बीजेपी के नेता अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर कहते हैं कि उनको कर्नाटका के 28 लोकसभा सीटों में से 20 सीट जीतनी ही है। अभी उनके पास 17 सीट हैं, लेकिन जेडीएस कांग्रेस गठबंधन के वजह से ये संख्या 11 या 12 तक आ सकती है। अगर जेडीएस और कांग्रेस चुनाव अलग अलग लड़ें तो वही होगा जो उत्तर प्रदेश में बसपा और समाजवादी पक्ष का हुआ था। लेकिन अभी यही देखना होगा कि बीजेपी या कांग्रेस के असंतुष्ट कितना सफल हो पाएंगे। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने निराश्रित गायों को सहारा देने वालों को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित करने का निर्देश दिया है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने निराश्रित गायों की समस्या के समाधान का वादा किया था, लेकिन बीजेपी ने इसे चुनाव से पहले की राजनीति बताया है। सुनिए जयपुर से हमारे सहयोगी नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
शास्त्र उसका महत्व रेखांकित करते हैं और श्रद्धालु गाय की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन फिर वो घड़ी आती है जब गाय गली चौराहों पर बेबस खड़ी मिलती है। अब राज्य के गोपालन महकमे ने निराश्रित गायों की देखभाल को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इसके तहत उन लोगों को गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों पर सम्मानित किया जाएगा जो गायों की परवरिश करते हैं। गोपालन निदेशक विश्राम मीणा ने बीबीसी से कहा,
गाँवों में, शहरों में, कस्बों में बहुत सारा आवारा और निराश्रित गोवंश है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि निराश्रित और आवारा गोवंश को गौशालाओं में शिफ्ट कराया जाए, उसमें आम जन को जोड़ने की दृष्टि से इस प्रकार की गोद लेने वाली जो अनुरोध पत्र है वो सभी जिला कलेक्टर्स को भेजा गया है। जिला कलेक्टर्स महोदय से ये आग्रह किया है, इस प्रकार की जो सेवा में अगर आगे बढ़कर के आते हैं तो ऐसे लोगों का 26 जनवरी 15 अगस्त उनका सम्मान किया जाए।
राज्य में कोई 2500 से ज्यादा गौशालाएं संचालित है, लेकिन फिर भी गाय जब अपनी आर्थिक उपयोगिता खोने लगती है उसे सहारा तलाशना पड़ता है। भीलवाड़ा में संग्रामगढ़ के सरपंच अशोक साहू कहते हैं,
गायों की सर बहुत बड़ी समस्या
शहर जाओ, आदमी पैदल नहीं चल सकता है, खेत खलियानों में भी नुकसान होता है किसानों का, दूसरी बात मोटरसाइकिल बाइक वाले उनको भी नुकसान होता है। सरकार इसमें पहल करे, गौशाला को प्रोत्साहन दे या गौशाला खुलवाए, तभी यह संभव है। बाकी सम्मानित करने में तो कोई भी आदमी कह देगा कि मैं गायों की सेवा कर रहा हूँ, आवारा गायों की।
राजस्थान में कोई 9 लाख गोवंश है। रेगिस्तानी भूभाग में पशुपालन की परंपरा बहुत पुरानी है। सीमावर्ती बाड़मेर जिले में बिसासर गांव के सरपंच नवाज अली इस योजना से बहुत उत्साहित हुए हैं। वे खुद भी एक गोपालक हैं।
सरकार की अगर पुख्ता जैसी व्यवस्था होती है ना, तो ये काफी सॉलिड हो जाएगी, आम आदमी प्रेरणा मिलेगी लोगों को, उत्साह होंगे लोग, क्योंकि पहले जो छोड़ देते ना सरकार को, वो लोग सोचेंगे और काफी हद तक हमारे सर यहाँ नहीं छोड़ते, हमारे समाज के अंदर गाय कैसे भी हाल में वो उस आदमी उसको करता है, उसकी देखरेख करता है।
करौली में दिव्यांग गायों की तीमारदारी करने वाले हरिओम कहते हैं गायों के लिए अब चारागाह नहीं बचे हैं। उधर सत्ता से प्रतिपक्ष में आ बैठी बीजेपी ने सरकार की इस योजना को चुनावी हथकंडा बताया है। बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ कहते हैं,
इस प्रकार के आदेश के बजाय अगर सरकारी आदेश करती आवारा पशुओं के लिए, हमें जहाँ कहीं भी पशु शिविर लगेंगे उस पशु शिविरों को पूरा अनुदान देंगे, या जो हमने अनुदान प्रारंभ किया था पंजीकृत गौशालाओं को उनको दुगना करेंगे, तो बात समझ में आती है। लोकसभा के चुनाव को लेकर इस तरह के पैतरे और जुमलेबाजी से कुछ होने वाला नहीं।
सांझ ढले गोधुली वेला में गाय अपना ठोर ठिकाना तलाशने कहीं अपना मकाम खोजती है तो कहीं गौशाला का रुख करती है, लेकिन ऐसी बहुतेरी गायें हैं जिन्हें उनके रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। पर क्या ये योजना कोई मदद करेगी, कहना मुश्किल है। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
झारखंड सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। सवर्ण आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद झारखंड तीसरा राज्य बन गया है जहां ये व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे पहले गुजरात और तेलंगाना सरकारों ने इसे लागू करने का निर्णय लिया था। सुनिए रांची से हमारे सहयोगी रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री रघुवर दास कल दोपहर धनबाद में थे। वहां से रांची लौटने के बाद उन्होंने कहा कि झारखंड में रहने वाले अनारक्षित वर्ग के गरीब युवाओं को केंद्र सरकार की तर्ज पर 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद कल देर शाम मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंधित विज्ञप्ति जारी कर दी। इसमें बताया गया कि शिक्षण संस्थानों में नामांकन और सरकारी नौकरियों के इच्छुक युवाओं को इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा। यह आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलने वाले 50% आरक्षण के अतिरिक्त होगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने बताया कि व्यवस्था केंद्र सरकार के निर्णय के आलोक में की गई है।
देखिए, माननीय मोदी जी ने पहली बार सवर्णों को आरक्षण देने का कार्य किया है। जो लोग आरक्षण से बाहर हैं, उन सभी वर्गों में जो आर्थिक रूप से कमजोर है, सभी को 10% का आरक्षण के तहत शिक्षण संस्थान में प्रवेश या नए नौकरी जिनको भी मिलेगा उसका लाभ मिलेगा। और सेम उसी पैटर्न पर राज्य सरकार ने भी लागू कर दिया है।
विपक्ष ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा को चुनावी स्टंट बताया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार को पहले नौकरियों का प्रबंध करना चाहिए, तब जाकर ऐसी घोषणाओं को तार्किक आधार मिल सकेगा।
गवर्नमेंट जो है वो ये बनाए बड़ा समिट ऑर्गेनाइज करके लोगों को प्राइवेट जॉब के लिए भेज रहा है, प्लेसमेंट का काम कर रही है।
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जब सरकार 50% आरक्षण के बैरियर को तोड़ ही रही है, तो उसे झारखंड के मूल वासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए भी आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए।
हम भी ये मांग करते हैं कि जब 50% आरक्षण में भी संशोधन होना है, तो झारखण्ड में जो मूल वासी पिछड़ी जातियाँ हैं इनको 27% का आरक्षण दिया जाए, और जनसंख्या के अनुपात में जो आरक्षण अभी यहाँ के आदिवासियों को 26% है, उसे 28% किया जाए। जब इतना है तो अल्पसंख्यक समुदाय को भी 5% का आरक्षण दिया जाए।
दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास शुरू से ही इसके पक्ष में थे। संसद के दोनों सदनों में सवर्ण आरक्षण विधेयक पास होने और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही उन्होंने अपने अधिकारियों को इसका ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। अब यह ड्राफ्ट सार्वजनिक किया जाता, इससे पहले ही 15 जनवरी की देर शाम मुख्यमंत्री कार्यालय ने विज्ञप्ति जारी कर इसके लागू होने की घोषणा कर दी, लेकिन यह नहीं बताया इसका स्वरूप क्या हो गया। क्या सरकार गरीबी निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार के ही मानक का अनुसरण करेगी, या फिर यहाँ का मानक दूसरा होगा। रवि प्रकाश, BBC रांची।
और अब खबर कीनिया की, जहां राजधानी नैरोबी के एक होटल में घुस आए सभी बंदूकधारियों को मार दिया गया है। ये घोषणा अब से कुछ घंटों पहले राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा ने की है। बीते कल 4 बंदूकधारी होटल में घुस आए थे। सुरक्षा बलों ने उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन करीब 20 घंटों तक वो होटल के भीतर ही रहे और गोलियां चलाते रहे। सुनिए बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सिंधुवासिनी से।
नैरोबी में मौजूद 101 कमरों वाले डुसिट डीटू होटल में बीते कल करीब 4 बंदूकधारी गोलियां बरसाते हुए घुस आए। स्थानीय समयानुसार दोपहर 3 बजे इन बंदूकधारियों ने होटल पर हमला किया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने होटल में प्रवेश कर वहां फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों और बंदूकधारियों के बीच गोलीबारी चलती रही। चश्मदीदों के अनुसार होटल परिसर से रह रहकर गोलियां चलने की आवाजें आ रही थी। ये स्थिति करीब 20 घंटों तक बनी रही, जिसके बाद आखिर बचे सभी बंदूकधारियों को मार दिया गया। देश के राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा,
Fellow citizens, Kenya was yesterday struck by a gang of criminals.
दोस्तों, कल आतंकियों के एक गुट ने कीनिया पर हमला किया। उन्हें लगा कि वो लोगों को मारकर हमें डराएंगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अब से थोड़ी देर पहले सुरक्षा बलों ने एक अभियान में उन सभी को मार दिया है। इन जान लेने वाले आतंकियों के कारण 14 मासूमों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए हैं। कीनिया के सभी मासूम लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।
As of this moment, we have confirmation that 14 innocent lives were lost.
कीनिया सरकार हमले में मरने वालों की संख्या 14 बता रही है, जबकि कीनिया में रेडक्रॉस का कहना है कि 24 लोगों की मौत हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने करीब 700 लोगों को होटल से बचाया है। उहुरू केन्याटा ने कहा कि हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
We will seek out every person that was involved in the funding.
हमारे हाथ उन सभी लोगों तक पहुंचेंगे जो इस हमले में आर्थिक मदद करने और इसे अंजाम देने में शामिल हैं। हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक उन्हें सजा नहीं दे देते। होटल पर हमले की जिम्मेदारी कथित इस्लामी चरमपंथी समूह अल शबाब ने ली है। माना जाता है कि अल शबाब का गढ़ सोमालिया में है। इस समूह के खिलाफ सोमाली सरकार ने जो अभियान छेड़ा है, उसमें कीनिया भी शामिल है और इस कारण कीनिया पर बार बार हमले होते हैं। 2015 में कीनिया की गैरिसा यूनिवर्सिटी में हुए एक हमले में 150 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले 2013 में नैरोबी के वेस्टगेट शॉपिंग मॉल में हुए इसी तरह के एक हमले में 67 लोगों की मौत हुई थी।
रिपोर्ट सुना रही थी सिंधुवासिनी। और अब वक्त है साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान का। बीते महीने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया में कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया था, जिसके बाद अब अमरीका के सहयोगी तुर्की ने कहा है कि वो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ बड़ा अभियान चलाएगा। लेकिन आशंका यह जताई जा रही है कि तुर्की इसकी आड़ में सीरिया में अमरीका का साथ देने वाले कुर्द लड़ाकों पर हमले कर सकता है। ट्रंप ने चेताया है कि तुर्की ने ऐसा कुछ किया तो उसे आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन तुर्की कुर्द लड़ाकों पर हमला क्यों करना चाहता है और ऐसी स्थिति आई तो अमेरिका किसका साथ देगा? दुनिया जहान में आदर्श राठौर आज इन्हीं सवालों की पड़ताल कर रहे हैं।
दुनिया जहां, तुर्की ऐसा देश जो यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। एक समय उस्मानी साम्राज्य के केंद्र रहे तुर्की को राष्ट्रवादी नेता कमाल अतातुर्क ने 1920 में आधुनिक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र के रूप में स्थापित किया था। तब से इस देश ने आर्थिक प्रगति भी की, लेकिन इस पर मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का आरोप भी लगता रहा है। इस देश की 20% आबादी कुर्दों की है, जिनका आरोप है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान दबाई जा रही है। ऐसे में कुर्द 1980 से छापामार लड़ाई भी लड़ रहे हैं, मगर अब तुर्की के पड़ोसी देश सीरिया में रह रहे कुर्दों को भी तुर्की से खतरा पैदा हो गया है। आलम यह है कि तुर्की के अहम सहयोगी देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया है कि अगर तुर्की ने कुर्दों पर हमला किया तो तुर्की को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया जाएगा। आखिर तुर्की को कुर्दों से क्या समस्या है? अमरीका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं कि इसे समझना है तो इतिहास में जाना होगा।
तुर्की के साउथ ईस्ट में, सीरिया के नॉर्थ ईस्ट में, इराक
के नॉर्थ वेस्ट में और ईरान के नॉर्थ वेस्ट में, ये चारों में एक ऐसा इलाका बनता है जहाँ कर्ड्स बसते हैं और वो एक इंडिपेंडेंट कम्युनिटी है। उनकी जबान अलग है, हैं तो वो सारे के सारे सुन्नी मुस्लिम्स, लेकिन उनकी लैंग्वेज और कल्चर अलग है। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि हर कम्युनिटी को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है, हक है, तो वो भी चाहते हैं कि एक कुर्दिस्तान बने। और जब से यूएस ने 2003 में इराक में इन्वेड किया है, नॉर्दर्न इराक में तकरीबन एज एन इंडिपेंडेंट मुल्क वो फंक्शन कर ही रहे हैं। दूसरा, ये YPG जो अमेरिका के साथ आईसिस के साथ लड़ने के बाद उसको बहुत सारे अमरीकी हथियार मिले हैं, वो शायद इतना पावरफुल हो जाए और उसने जो टेरिटरी कॉन्कर की हुई है फ्रॉम आईसिस सीरिया में, तो वो सीरिया की टेरिटरी लेके इराक के कुर्दिस्तान को ज्वाइन करके बड़ा सा कुर्दी स्टेट वहां पे एमर्ज हो सकता, जो टर्की की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट पैदा हो सकता है। इस डर से अमेरिका अगर वहां से निकला तो वो बेसिकली उनको जाएंगे और उनको खत्म कर देंगे और उनसे जमीनें छीन लेंगे वापस।
तुर्की की चिंता ये है कि बगल में कुर्द राष्ट्र बना तो उसके लिए अपने यहाँ रह रही कुर्द आबादी को संभालना मुश्किल हो जाएगा, जो पहले से ही संघर्ष कर रही है। यही कारण है कि तुर्की के सहयोगी देश अमेरिका ने सीरिया में तथा कथित इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए YPG नाम के जिस कुर्द संगठन की सहायता ली, आज तुर्की उसी को खत्म करने पर तुला हुआ है। तुर्की की अंकारा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर ओमेर अनस बताते हैं कि तुर्की का मानना है कि सीरिया में सक्रिय YPG उसके यहाँ चरमपंथी संगठन घोषित किए गए कुर्द अलगाववादी संगठन PKK का हिस्सा है।
सबसे बड़ा मुद्दा YPG या कुर्दिश फोर्सेस हैं, क्योंकि इन फोर्सेस का ताल्लुक सीधे तौर पर PKK से है और PKK एक आतंकवादी संगठन के तौर पर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में दर्ज है। अब मसला ये है कि जो YPG ग्रुप है उसका PKK से जो लिंक है वो जब कब जाहिर होता रहता है। अमेरिकन सीनेटर्स ने इसको माना है कि जो फोर्सेस सीरिया में अमेरिका के सहयोग से ISIS के खिलाफ लड़ रही हैं, उसमें बड़ी तादाद उनकी है जो PKK से संबंधित रहे हैं, और यही सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है जो तुर्की और अमेरिका के बीच में एक खाई के तौर पर बना हुआ है।
तुर्की ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सीरिया में बड़े पैमाने पर नए सिरे से अभियान चलाने का ऐलान किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस अभियान के निशाने पर कुर्द लड़ाके होंगे। प्रोफेसर मुक्तदर खान बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कुर्दों पर एक बार फिर वैसा ही संकट पैदा हो जाएगा जैसा 1992 में हुआ था।
1992 में जब गल्फ वॉर 2 ही थी, जब जॉर्ज बुश सीनियर ने कुवैत से हमला किया था कुवैत को आजाद करने के लिए, तो इन्होंने सिग्नल किया था कि कर्ड्स को वो सद्दाम हुसैन के खिलाफ रिपेल करें, लेकिन सद्दाम हुसैन को कुवैत से निकालने के बाद अमेरिकन्स ने कर्ड्स को अबैंडन कर दिया और उसके बदले में सद्दाम हुसैन ने बाद लोगों के एस्टीमेट से 50,000, बाद लोगों के एस्टीमेट से तकरीबन 3,00,000 कर्ड्स को गैस से मारा, केमिकल वेपन से इस्तेमाल करके उनको मारा है 1992-93 में। तो अमेरिका की हिस्ट्री में अमेरिका एक बार तो ऑलरेडी कर्ड्स को अबैंडन कर दिया है, जिसकी वजह से एक जेनोसाइड हो गया उनके खिलाफ। अब जो बात अमेरिकन ये डर रहे हैं कि अगर अमेरिका फिर सीरिया छोड़कर अगर YPG को एक्सपोज कर देता है तो शायद ये दोबारा हिस्ट्री दोहराई जाएगी और फिर इस बार फिर कर्ड्स मारे जाएंगे, इस बार तुर्की के हाथ से।
कुर्द लड़ाकों ने सीरिया में IS के खिलाफ लड़ने में मदद की है, जाहिर है इससे सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को भी फायदा हुआ है। फिर तुर्की कैसे सीरिया की सीमा में घुसकर कुर्द लड़ाकों को निशाना बना पाएगा? सीरियाई सरकार किस आधार पर तुर्की को अपने यहाँ कुर्द लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई करने देगी? अंकारा यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर ओमेर अनस बताते हैं,
इस मामले में ये एक बात बहुत साफ है कि तुर्की और सीरिया के बीच में 90s का जो समझौता है जिसके मुताबिक तुर्की को ये अधिकार है कि अगर PKK अपना संगठन सीरिया के किसी भी क्षेत्र में और खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में अगर मजबूत करता है तो तुर्की को ये अधिकार होगा कि वहां पर वो फौजी कार्रवाई कर सके। तो इस समझौते के अनुसार भी अगर अमेरिका तुर्की का साथ नहीं देता है तो तुर्की अपने बायलेटरल समझौते के तहत सीरिया में अपनी फौजें भेज करके PKK को और YPG को हटाने की कोशिश कर सकता है।
ऐसे में अगर तुर्की ने सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाकों पर हमला किया तो क्या अमेरिका अपने सहयोगी रहे कुर्दों की मदद करेगा? کیا آرتھک روپ سے تباہ کر دینے کی دھمکیاں ترکی کو اس طرح کی کارروائی کرنے سے روک پائے گی؟ پروفیسر مقتدر خان کہتے ہیں کہ اس کی سمبھاونا بہت کم ہے۔
وہ بہت ہی سیریس ہیں اس مسئلے کے تعلق سے۔ ساری مڈل ایسٹ میں جتنا نیشنلسٹ ملک ترکی ہے کوئی ملک نہیں ہے۔ مطلب ٹرکک آئیڈینٹی اور ٹرکش نیشنلزم ان کو اسلامزم سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک قسم سے اردوغان ہیز بیکم دا نیشنلسٹ پریسیڈنٹ آف ٹرکی، اور جو پہلے وہ ڈائلاگ شروع کیے تھے کرڈز کے ساتھ وہ بھی ٹوٹلی ختم کر دیے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کرڈش مسئلے پر وہ کمپرومائز کریں گے۔
انکارا یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر عمیر انس بھی مانتے ہیں کہ امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے سیریا سے سینک ہٹانے کا فیصلہ اچانک نہیں لیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ امریکہ کردوں سے ناراض تھا۔
وائی پی جی ہے اور جو پی کے کے سے سمبندھت جو گروپ ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ جب امریکہ ان کے اوپر پریشر بنانا چاہتا ہے تو وہ فوراً بشار الاسد کی طرف وہ مڑ گئے اور اس سے سمجھوتا کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ حالانکہ اس میں ان کو سفلتا نہیں ملی، لیکن اس سے امریکہ بھی ناراض ہوا کہ وہ امریکہ کو چھوڑ کر کے بشار الاسد سے سیدھے جا کر سمپرک کیوں استھاپت کر رہے ہیں۔
امریکہ نے پچھلے سال ترکی پر کڑے آرتھک پرتیبندھ لگا دیے تھے، جس سے اس کی مدرا لیرا میں ایتہاسک گراوٹ آ گئی تھی۔ مجبوری میں ترکی کو جھکنا پڑا تھا۔ اس طرح سے بھلے ہی امریکہ طاقتور لگتا ہو، لیکن پروفیسر مقتدر خان کہتے ہیں کہ ترکی کے ہاتھ میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی مدد سے وہ امریکہ کو بیک فٹ پر ڈال سکتا ہے۔
دیکھیے، ترکی امریکہ کا نیٹو ایلائی ہے۔ سب سے قریب جو امریکہ کے نیوکلیئر ویپنز ہیں وچ آر ٹارگیٹنگ رشیا، وہ ترکی میں ہیں۔ امریکہ کا سب سے بڑا بیس وچ ول بی دا فرنٹ لائن اگر رشیا سے جنگ ہوتی ہے، وہ بھی ترکی میں ہے۔ ابھی جو امریکہ کا جو لیٹسٹ فائٹر جیٹ نکلا ہے F-35، اس کے بعد ایسے الیکٹرانک کمپوننٹس ہیں جو صرف اور صرف ٹرکش کمپنیز بناتے ہیں۔ تو اس سسٹم سے سیکیورٹی انٹر ڈیپینڈنس ترکی اور امریکہ کے نظام میں بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے۔
اس سمے ترکی کے راشٹرپتی ریچپ طیب اردوان پر کرد لڑاکوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے دیش کے اندر سے بھاری دباؤ بنا ہوا ہے۔ ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ وہ سینیہ کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، مگر عمیر انس بتاتے ہیں کہ اس سمسیا کو شانتی سے بھی سلجھایا جا سکتا ہے۔
اب اس سمسیا کا سمادھان تو ترکی اور امریکہ کو بیٹھ کر کے ڈھونڈنا ہی پڑے گا کہ وہ کس طرح سے کردش وہاں پر لڑاکے ہیں ان میں سے وائی پی جی اور پی کے 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 لڑاکوں کو الگ کریں اور جو عام کردش جنتا ہے اس کو الگ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے لڑاکے وائی پی جی کے ہیں اور سارے لڑاکے پی کے کے سے جڑے ہوئے ہیں۔
جانکاروں کا کہنا ہے کہ کردوں کا نرسنہار روکنے کی ذمہ داری امریکہ پر زیادہ ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر پاتا تو یہ دوسرا موقع ہوگا جب وہ کردوں کو بھروسہ دے کر انہیں بعد میں اکیلا چھوڑ دے گا۔ اسلامک سٹیٹ کا پربھاؤ ختم کرنے میں کردوں کی بھومکا اہم رہی ہے، اور کرد مہیلاؤں تک نے بٹالین بنا کر جنگ لڑی ہے۔ ایسے میں امریکہ کی ساکھ بھی داؤں پر لگی ہوئی ہے۔ اگر امریکہ اس بھاوی سنگھرش کو روکنے میں ناکام رہتا ہے تو سیریا میں ایک اور مانویہ سنکٹ پیدا ہو جائے گا۔
دنیا جہان کی آج کی کڑی آپ کو کیسی لگی بتائیے گا ضرور، اور اب جانتے ہیں کھیلوں کی دنیا کی ہلچل اندو پانڈے سے جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔
تو کھیل کی دنیا کی بات کریں تو بھارتی مہیلا فٹ بال ٹیم 2020 ٹوکیو اولمپک کوالیفائر کے دوسرے دور کی تیاریوں کے روپ میں ہانگ کانگ اور انڈونیشیا کے خلاف دوستانہ میچ کھیلے گی۔ بھارت کی 25 سدسیہ ٹیم 19 جنوری کو ہانگ کانگ کے لیے روانہ ہوگی۔ اور اب بات کرتے ہیں آسٹریلین اوپن کی، تو گت چیمپئن راجر فیڈرر اور کیرولین وجنیاکی نے اپنے اپنے مقابلے الگ الگ انداز میں جیت کر آسٹریلین اوپن کے تیسرے دور میں پرویش کر لیا ہے۔ فیڈرر نے لگاتار 20ویں سال تیسرے دور میں یہ پرویش لی ہے، اور 20 بار کے گرینڈ سلم چیمپئن فیڈرر میلبورن میں ریکارڈ 7واں اور لگاتار تیسرا خطاب جیتنے کے ارادے سے اترے ہیں۔ انہوں نے پہلے دور میں ڈینس استومین کو ہرایا، لیکن دوسرے دور میں انہیں کافی کڑی مشقت بھی کرنی پڑی۔ تو دوسری طرف چھٹی وریتا پراپت کروشیا کی مارین چلچ نے امریکہ کے میکنجی ڈونالڈ کو 5 سیٹوں میں ہرایا، جو اب اسپین کے فرنانڈو وڈاسکو سے کھیلیں گے۔ اور گریس کے سٹیفانوس ٹی بھی سربیا کے وکٹر ٹوئکی کو ہرا کر کے اگلے دور میں پہنچ گئے ہیں۔ اور اگر ہم ہاکی کی بات کریں تو قریب 4 مہینے پہلے یعنی کہ پچھلے سال ستمبر میں ہاکی سے سنیاس لینے والے فارمر کیپٹن سردار سنگھ کو اب ہاکی انڈیا نے سلیکشن کمیٹی میں شامل کر لیا ہے۔ یعنی کہ سردار سنگھ چار مہینے پہلے جن کھلاڑیوں کے ساتھ فیلڈ پر ہاکی کھیلا کرتے تھے اب بطور سلیکٹر ان کے سلیکشن کے فیصلے میں بھاگیداری کریں گے۔
دھنیواد اندو پانڈے۔ کارکرم میں اب سماچاروں کے لیے وقت نہیں بچا ہے، دن بھر میں آج اتنا ہی۔ کارکرم کا تکنیکی پکش سنبھالا شاکر عالم نے۔ اگلا پرسارن نمسکار بھارت کل سویرے۔ فی الحال مانسی داش سمیت پوری ٹیم کو دیجیے انمتی۔ نمسکار۔